देवा वापस पेलिंग लौट गई थी। आर्यांश को इसके जाने का बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि वो दीवा को कॉल कर सके। उल्टा वो खुद दीवा के कॉल का इंतजार कर रहा था। हॉस्पिटल के पार्क में घूमते हुए आर्यांश का मोबाइल बजा तो उसे यही लगा कि दीवा का कॉल आया है, लेकिन जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया तो ये मिस्टर पृथ्वी कपूर का कॉल था। आर्यांश के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए थे। वो अच्छे से जानता था कि पृथ्वी ने उसे क्यों कॉल किया होगा। आर्यांश ने उन्हें लौटने का वादा किया था, तो जाहिर सी बात थी कि वो उस पर नज़र भी रख रहे थे। उसने उनसे थोड़ा टाइम मांगा था और उन्होंने वो टाइम दिया भी था। अब वक्त आ गया था कि पृथ्वी की डिमांड को पूरा किया जाए। आर्यांश को ना चाहते हुए भी पृथ्वी का कॉल रिसीव करना पड़ा। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। तो मिसेज वर्मा की सर्जरी दीवा गोयनका ने की थी। कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वो लड़की आज भी उतनी ही बेवकूफ़ है। वो साफ दिल की है, पर क्या कर सकते हैं, लोगों के दिलों में चालाकियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें साफ दिल लोग बेवकूफ नजर आते हैं, आर्यांश ने तुरंत जवाब में कहा। उसकी आवाज सख्त थी। दीवा के खिलाफ बोला हुआ एक शब्द भी उसे बर्दाश्त नहीं था। वहीं उसका जवाब सुनकर पृथ्वी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। लुक हुज टॉकिंग, पृथ्वी ने आंखें घुमाकर कहा। जिस इंसान ने सबसे ज्यादा उस लड़की के साथ धोखा किया वही दूसरों की चालाकियों की बातें कर रहा है। क्या आपने मुझे ताने मारने के लिए कॉल किया है, आर्यांश ने सीधे सीधे पूछा, क्योंकि पृथ्वी की बातें उसे जरा भी पसंद नहीं आ रही थीं। एक तो वो दीवा को भला बुरा कह रहे थे, ऊपर से उसकी गलतियों को भी याद दिला रहे थे। आर्यांश को खुद से एहसास था कि वो गलत था, पर किसी और का ताने मारना भी उसे पसंद नहीं था। तुम अच्छे से जानते हो मैंने कॉल क्यों किया है। मुंबई कब आ रहे हो, पृथ्वी जवाब में बोले। सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, बस 2 हफ्ते के लिए उन्हें मॉनिटर करना जरूरी है। उसके बाद कुछ जरूरी टेस्ट हो जाए, थोड़ा टाइम उन्हें अपने घर में बिताना होगा। 1-1.5 महीने तो लग ही जाएंगे, इतने में डॉक्टर भी उन्हें ट्रैवल करने की इजाज़त दे देंगे, आर्यांश ने कैलकुलेटिव जवाब दिया। पृथ्वी ने सिर हिलाया और सख्त आवाज में बोले, 1-1.5 महीने तुमने कम नहीं बता दिए। मिसेज वर्मा को पेलिंग जाना है या तुम्हारा मन कर रहा है वहां रहने का। मेरा मन क्यों करेगा, आपको पता है मुझे ठंडे इलाके पसंद नहीं है, आर्यांश ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे सुमन और उससे जुड़ी जिम्मेदारी नहीं होती तो वो कल ही मुंबई लौट आता। पृथ्वी आर्यांश को अच्छे से समझते थे। आर्यांश के बहाने उनके सामने कोई काम नहीं आने वाले थे। 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। मिसेज वर्मा को सुरक्षित मुंबई हॉस्पिटल ट्रांसफर करना मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए पूरी मेडिकल टीम तैयार रहेगी, और रही बात उनके घर के सामान की तो वो भी उन तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। 3 दिन बाद ठीक इसी समय पर मिलते हैं। पृथ्वी ने अपना फैसला सुनाया और कॉल कट कर दिया था। उन्होंने आर्यांश को बोलने तक का मौका नहीं दिया था। आर्यांश ने यही सोचा था कि सुमन के बहाने ही सही, लेकिन उसे दीवा से दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी दीवा ने प्रॉमिस किया था कि वो सुमन से मिलने के लिए वीकेंड पर हॉस्पिटल जरूर आएगी। दोबारा पेलिंग जाने के बहाने भी वो दीवा से आराम से मिल सकता था, लेकिन पृथ्वी के कॉल और उनके आर्यांश को जल्दी आने के ऑर्डर देने के आगे आर्यांश कुछ नहीं कर पा रहा था। आर्यांश ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध ली थी। इस वक्त उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। वो दांत भींचते हुए बोला, मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें हाँ कहना ही नहीं चाहिए था। सोचा था एक मौका मिल जाएगा उसे समझाने का कि उसकी जगह उस छोटे शहर में नहीं है, लेकिन दादाजी की वजह से सब गड़बड़ हो गई। आर्यांश अपना मन मार कर रह गया था। वो डॉक्टर से बात करने के लिए जाने लगा, लेकिन पृथ्वी का कॉल आर्यांश से पहले डॉक्टर की टीम के पास ही पहुंचा था। आर्यांश की आइडेंटिटी जानने के बाद डॉक्टर भट्ट ने उसे देखकर हल्का सा सर झुकाया। आपने पहले क्यों नहीं बताया आप कौन हैं? आप चिंता मत कीजिए, मिसेज वर्मा के ट्रैवल की जिम्मेदारी हमारी है, उनकी अटेंडिंग टीम उनके साथ जाएगी, डॉक्टर भट्ट बोले, मानो ये कहने के लिए उन्हें पहले से कहा गया था। मुझे लगा आप मना करोगे, आर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा। मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुना है कपूर इंटरनेशनल्स का हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, आपके दादाजी ने मुझे वहां ज्वाइन करने को कहा है, मैं हमेशा से मुंबई में ज्वाइन करना चाहता था, डॉक्टर भट्ट ने मुस्कुराकर कहा। इतनी जल्दी इतने बड़े हॉस्पिटल में प्रमोशन मिलना आसान नहीं था। आर्यांश ने हल्के से सिर हिला दिया था। वो समझ गया था कि पृथ्वी ने अगर उसे वापस बुलाने के लिए कॉल किया है तो पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। वो लाचार चेहरे के साथ दूसरी तरफ पलटा और तंज भरे लहजे में बोला, और कोई मुझे ताने मार रहा था कि मैं फैमिली की पोजीशन और पैसों का गलत इस्तेमाल करता हूँ। हद है, आर्यांश दीवा के पास रुकने का कितना भी सोच ले, लेकिन पृथ्वी ने हर तरफ से उसके दीवा के पास पहुंचने के दरवाजे बंद कर दिए थे। मजबूरन उसे मुंबई जाने के लिए पैकिंग करनी ही पड़ी। वहीं दूसरी तरफ एक लंबी नींद के बाद दीवा रात के 9 बजे के करीब उठी। एक तो वो इतने दिनों बाद घर आई थी, ऊपर से आते ही लेट गई थी। ना तो घर पर बनाने के लिए सामान रखा हुआ था और ना ही उसका कुछ बनाने का मन था। ऊपर से उसे भूख भी बहुत जोर से लगी थी। दीवा ने अपना मोबाइल चेक किया तो आर्यांश की तरफ से कोई कॉल और मैसेज नहीं था। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। मैं ही सच में पागल हूँ। जब वो इंसान अपनी तरफ से क्लियर कर चुका है कि उसे मेरे साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, तो मुझे उससे क्यों एक्सपेक्टेशंस लगानी है? मुझे उसकी हेल्प ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर बात सुमन माँ की नहीं होती तो मैं उससे दोबारा बात तक नहीं करती, दीवा गुस्से में बड़बड़ा कर बोली। उसने जल्दी से अपने कपड़े और बाल सही किए। वो आर्यांश के बारे में सोचकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। दीवा फिलहाल कुकिंग नहीं कर सकती थी, बस यही सोचकर वो बाहर खाना खाने के लिए जा रही थी। आर्यांश जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, वैसे भी वो देर तक खुला रहता था। जैसे ही दीवा ने अपने घर का दरवाजा खोला, उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जो उम्र में उससे छोटी लग रही थी। दीवा को देखते ही उसने एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी। कोई प्रॉब्लम है? दीवा ने उसकी तरफ उलझन भरे चेहरे के साथ देखा। वो उस लड़की से पहली बार मिल रही थी, जबकि वो इस तरह मुस्कुरा रही थी मानो दीवा की कितनी पुरानी दोस्त हो। मुझे काम की जरूरत है। खाना बनाने में तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ, सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो मैं कब से काम करना शुरू करूँ? उस लड़की ने जवाब में कहा। दीवा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। वो सख्त आवाज में बोली, और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किसी ने नहीं, बताया ना काम की जरूरत है, और इस टाउन में हर कोई जानता है कि बाहर से डॉक्टर रहने के लिए आए हैं। वो पूरा दिन व्यस्त रहते हैं तो अपना छोटा मोटा काम नहीं कर पाते। आपके अलावा मैं और लोगों से भी पूछने जाने वाली हूँ। आपका घर नीचे था तो सोचा शुरुआत आपसे ही कर लूँ, उस लड़की ने पलके झपकाते हुए कहा। वो दिखने में काफी मासूम और क्यूट नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी आंखें और सर पर ऊन से बनाई हुई टोपी के साथ दो चोटियों में वो और भी प्यारी लग रही थी। फिर तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारी शुरुआत बहुत बुरी रही, मुझे हाउस हेल्पर की जरूरत नहीं है, दीवा ने जवाब दिया और दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसने जल्दी से दरवाजा पकड़ लिया था। अरे ऐसे मत कीजिए मैडम जी, चाहे तो पैसे कम दे देना, सच में काम की जरूरत है, लड़की ने जल्दी से कहा।
ऊपर जाकर दूसरे डॉक्टर से पूछो, वो तुम्हें थोड़े पैसे ज्यादा भी दे देंगे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, दीवा ने सख्ती से कहा, और इस बार सच में उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। बाहर खड़ी लड़की का मुंह बन गया था। वो गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, उन्होंने तो कहा था बहुत प्यारी और शांत स्वभाव की है, ऐसे कौन मुंह पर दरवाजा बंद करता है? अब कह दिया तो दूसरे डॉक्टर से भी पूछना पड़ेगा। अच्छा यार, अजीब मुसीबत में फंसा दिया। मुंह बनाते हुए वो लड़की वहां से ऊपर जाने लगी, तो वहीं दीवा घर के अंदर थी। वो इस वक्त गुस्से में आर्यांश को कॉल कर रही थी। वो बेवकूफ नहीं थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके घर के सामने खुद ब खुद मदद चलकर कैसे आ गई। न जाने वो लड़की कब से उसके उठने का इंतजार कर रही थी। वहीं दीवा का कॉल आते देखकर आर्यांश ने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे यही लग रहा था कि दीवा कॉल करने के लिए सुमन का नाम लेगी, पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहे जो भी बहाना लगाए, उसने कॉल किया यही काफी था। जैसे ही आर्यांश ने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से दीवा चिल्लाई, आगे से मेरे लिए हेल्प भेजने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और ज्यादा ही मेरी परवाह है तो इस तरह सख्त बनने का दिखावा करके मेरा दिल मत दुखाओ। एक तरफ तो तुम कहते हो कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ऐसी हरकतें कर रही हो कि चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। दूर रहने का सोच लिया है तो दूर ही रहो, और खबरदार जो कभी मेरे सामने आए, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। दीवा ने आर्यांश को बोलने का मौका तक नहीं दिया और उसे अच्छा खासा सुनाकर कॉल कट कर दिया था। आर्यांश अभी भी आंखें बड़ी करके स्क्रीन की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए उस लड़की की तरह उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कॉल की दूसरी तरफ दीवा ही मौजूद थी। उसने दीवा को गुस्से में जरूर देखा था, पर वो गुस्से में रोने लग जाती थी। इस तरह चिल्लाना और धमकी देना दीवा के बस में बिल्कुल नहीं था। कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था क्या? ये दीवा ही थी ना या कोई और? आर्यांश उलझन भरे स्वर में बोला। आर्यांश ने दीवा से बात करने के लिए कॉल किया तो उसने देखा दीवा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। ये तो उसे और भी हैरान कर रहा था। एक तो पहले से ही पृथ्वी की वजह से उसे दीवा से दूर जाना पड़ रहा था, ऊपर से दीवा का बर्ताव देखकर लग रहा था कि उसने आर्यांश की बातों को सच में इस बार सीरियसली ले लिया था और आर्यांश से दूर रहने का सोच लिया था। वैसे दीवा का बदला हुआ नया रूप कैसा लग रहा है? आपको आपकी हमेशा यही शिकायत रहती थी कि दीवा बहुत मासूम सी है, कोई उसे बेवकूफ बोलता था तो कोई बोलता था कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है। लो, दीवा की नारी शक्ति, गुस्सा जगा दिया। लगता है अब आर्यांश को फिर से उसे मनाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं।